ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
कहानी का शीर्षक चूड़ी वाली। अभी तो पहना गई हो बहू जी, बड़ी अच्छी चूड़ियां हैं, सीधे बंबई से पार्सल मंगाया है, सरकार का हुक्म है इसलिए नई चूड़ियां आते ही चली आती हूँ। तो जाओ सरकार को ही पहनाओ, मैं नहीं पहनती। बहू जी जरा देख तो लीजिए, कहती मुस्कुराती हुई ढीठ चूड़ी वाली अपना बक्स खोलने लगी। वह 25 वर्ष की एक गोरी छरहरी स्त्री थी, उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने के लिए ढली थी। पान से लाल पतले पतले होंठ दो तीन वक्रताओं में अपना रहस्य छुपाए हुए थे। उन्हें देखने का मन करता, देखने पर उन सलोने अधरों से कुछ बोलवाने का जी चाहता है, बोलने पर हंसाने की इच्छा होती, और उसी हंसी में शैशव का अलहड़पन, यौवन की तरावट और प्रौढ़ की सी गंभीरता बिजली के समान लड़ जाती। बहुजी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती, पर जब पंजों में अच्छी चूड़ी चढ़ाकर संकट में फंसाकर वे हंसते हुए कहती, एक पान मिले बिना ये चूड़ी नहीं चढ़ती, तब बहुजी को क्रोध के साथ हंसी आ जाती और उसकी तरल हंसी की तरी लेने में तन्मय हो जाती। कुछ ही दिनों से ये चूड़ी वाली आने लगी है, कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती और ऐसे ढंग फैलाती कि बिना सरकार के आए निपटारा ना होता। ये बहू जी को असह हो जाता। आज उसको चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्लाकर बोली, आजकल दुकान पर ग्राहक कम आते हैं क्या? बहू जी आजकल खरीदने की धुन में हूं, बेचती हूं कम। इतना कहकर कई दर्जन चूड़ियां बाहर सजा दी। स्लीपरों के शब्द सुनाई पड़े। बहू जी ने कपड़े संभाले, पर वे ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सिर टेढ़ा करके, ये जर्मनी की है, ये फ्रांसीसी है, ये जापानी है कहती जाती। सरकार पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्या रोज इन नई चूड़ियां पहनाने के लिए इन्हें हुक्म मिला है? बहू जी ने गर्व से पूछा। सरकार ने कहा, पहनो तो बुरा क्या है, बुरा तो कुछ नहीं, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती होगी। चूड़ी वाली ने सिर नीचा किए कनखियों से देखते हुए कहा। एक लहर सी लाली आंखों की ओर से कपोलों को तर करती हुई दौड़ जाती थी। सरकार ने देखा, एक लालसा भरी युवती व्यंग कर रही है। हृदय में हलचल मच गई, घबराकर बोले, ऐसा है तो ना पहने। भगवान करे रोज पहने, चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के सम्मान बोली। अच्छा तुम अभी जाओ। सरकार और चूड़ी वाली दोनों की ओर देखते हुए बहू जी ने झुंझलाकर कहा, तो क्या मैं लौट आऊं? आप तो कहती थी ना कि सरकार को ही पहनाओ, तो जरा उनसे पहनने के लिए कह दीजिए। निकल मेरे यहां से, कहते हुए बहू जी की आंखें तिलमिला उठी। सरकार धीरे से निकल गए। अपराधी के समान सर नीचा किए चूड़ी वाली अपनी चूड़ियां बटोर कर उठी, हृदय की धड़कन में अपनी रहस्यपूर्ण निश्वास छोड़ती हुई चली गई। चूड़ी वाली का नाम था विलासिनी। वह नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत कला की सुख्याति थी, वैभव भी कम न था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त संभार मिलने पर भी उसे संतोष न था, हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। कुलवधू बनने की अभिलाषा हृदय में और दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय स्वप्न उसकी आंखों में समाया था। स्वच्छंद प्रणय का व्यापार अरुचिकर हो गया, परंतु समाज उससे हिंस पशु के समान संशक था। उससे आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। ये उसकी सरल आवश्यकता थी, क्योंकि अपने व्यवसाय में उसका प्रेम क्रय करने के लिए बहुत से लोग आते थे, पर विलासिनी अपना हृदय खोलकर किसी से प्रेम न कर सकती थी। उन्हीं दिनों सरकार के रूप, यौवन और अचारित्र ने उसे प्रलोभन दिया। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी सुंदर अटालिका थी, वहीं रहते थे। उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी। विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर गड़ गईं। अपना चिर संचित मनोरथ पूर्ण करने के लिए वे कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी। सरकार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजान बने रहे। अमीरी का एक कौतुक था, एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा ना देते। विलासिनी के कलापूर्ण सौंदर्य ने जो कुछ प्रभाव उनके मन पर डाला था, उसके लिए उनके सुरुचिपूर्ण मन ने अच्छा बहाना खोज लिया था। वे सोचते बहू जी का कुल वधू जनोचित सौंदर्य और वैभव की मर्यादा देखकर चूड़ी वाली स्वयं पराजय स्वीकार कर लेगी और अपना निष्फल प्रयत्न छोड़ देगी। तब तक यह एक अच्छा मनोविनोद चल रहा है। चूड़ी वाली अपने कौतूहलपूर्ण कौशल में सफल न हो सकी थी, परंतु बहू जी के आज के दुर्व्यवहार ने प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाशीय रूप से उसके यहां जाने लगे। विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाले के उपवन में कटता। कुल मर्यादा, लोकलाज और जमींदारी सब एक और चूड़ी वाली अकेले। दालान में कुर्सियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का खेद मिटा रहे थे। पास ही अनार का वृक्ष था, उसमें फूल खिले थे। एक बहुत ही छोटी काली चिड़िया उन फूलों में चोंच डालकर मकरंद पान करती और कुछ केसर खाती, फिर हृदय विमोहक कल नाद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से कौतुक देख रहे थे। बोले, इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा? ये फूल सुंगी है, पिंजरे में जी नहीं सकती। उसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है। स्वर्ण पिंजर नहीं, उसे खाने के लिए फूलों की केसर का चारा और पीने के लिए मकरंद मदिरा कौन जुटावेगा? पर इसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। वीणा में भी कोई कोई मीड ऐसी निकलती होगी, इसे अवश्य पकड़ना चाहिए। जिसमें बाधा नहीं, बंधन नहीं, जिसका सौंदर्य स्वच्छंद है, उस असाधारण प्राकृतिक कला का मूल्य क्या बंधन है? कुरुचि के द्वारा वह कलंकित भले भी हो जाए, परंतु पुरस्कृत नहीं हो सकती। उसे आप पिंजरे में बंद करके पुरस्कार देंगे या दंड? कहते हुए उसने विजय की एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ी। सरकार की उस वन विहंगम को पकड़ने की लालसा बलवती हो उठी। उन्होंने कहा, जाने भी दो, वह अच्छी कला नहीं जानती। प्रसंग बदल गया। नित्य का साधारण विनोदपूर्ण क्रम चला। चूड़ी वाली अपने अभ्यास के अनुसार समझती कि यदि बहू जी की अपार प्रणय संपत्ति में से कुछ अंश में भी लेती हूं तो हानि क्या, परंतु बहू जी को अपने प्रणय के एकाधिपत्य पर पूर्ण विश्वास था। निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगी। राज यक्षमा के भयानक आक्रमण से वह धुलने लगी और सरकार वन विहंगनी विलासनी को स्वायत्त करने में दत्तचित हुए। रोगी की शुश्रूषा और सेवा में कोई कमी न थी, परंतु एक बड़े मुकदमे में सरकार का उधर सर्वस्वांत हुआ, इधर बहू जी चल बसी। चूड़ी वाली ने समझा कि उसकी पूर्ण विजय हुई, पर बात कुछ दूसरी थी। विजय कृष्ण का वह एक विनोद था। जब सब कुछ चला गया तब विनोद लेकर क्या होगा। एक दिन चूड़ी वाली से छुट्टी मांगी। उसने कहा, कमी किस बात की है, मैं तुम्हारी ही हूं और सब विभव भी तुम्हारा है। विजय कृष्ण ने कहा, मैं वैश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने में असमर्थ हूं। चूड़ी वाली बिलखने लगी, विनय किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर विजय कृष्ण चले ही गए। वे सोचने लगी कि अपना व्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़कर जो सुख खरीदा था उसका कोई मूल्य नहीं। मैं कुल वधू होने की उपयुक्त नहीं, क्या समाज के पास इसका कोई प्रतिकार नहीं? इतनी तपस्या और इतना स्वार्थ त्याग व्यर्थ है। परंतु विलासिनी ये ना जानती थी कि स्त्री और पुरुष संबंधी समस्त अंतिम निर्णय करने में समाज कितना ही उदास क्यों ना हो, दोनों पक्षों को सर्वथा संतुष्ट नहीं कर सका और ना कर सकने की आशा है। यह रहस्य सृष्टि को उलझा रखने की कुंजी है। विलासिनी ने बहुत सोच समझकर अपनी जीवनचर्या बदल डाली। सरकार से मिली हुई जो कुछ संपत्ति थी उसे बेचकर पास ही के एक गांव में खेती करने के लिए भूमि लेकर आदर्श हिंदू गृहस्थ की सी तपस्या करने में अपना बिखरा हुआ मन उसने लगा दिया। उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल वट वृक्ष और निर्मल जल का सरोवर था। वहीं बैठकर चूड़ी वाली ने पथिकों की सेवा करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी और अन्न से उसका घर भरा रहने लगा। भिखारियों को अन्न देकर उन्हें खिला देने में उसे अकथनीय सुख मिलता। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चूड़ी वाली को सहेली बनाने के लिए यौवन का तीसरा पहर करुणा और शांति को पकड़ लाया। उस पथ से चलने वाले पथिकों को दूर से किसी कला कुशल कंठ की तान सुनाई पड़ती। अब लो नसानी अब ना नसे हो, वट वृक्ष के नीचे एक अनाथ बालक नंदू को चना और गुड़ की दुकान चूड़ी वाली ने करा दी है। जिन पथिकों के पास पैसे ना होते उनका मूल्य वह स्वयं देकर नंदू की दुकान में घाटा ना होने देती और पथिक भी विश्राम किए बिना उस तालाब से ना जाता। कुछ ही दिनों में चूड़ी वाली का तालाब विख्यात हो गया। संध्या हो चली थी, पखेरुओं का बसेरे की ओर लौटने का कोलाहल मचा और वट वृक्ष में चहल पहल हो गई। चूड़ी वाली चरनी के पास खड़ी बैलों को देख रही थी। दालान में दीपक चल रहा था, अंधकार उसके घर और मन में बलजोरी घुस रहा था। कोलाहल शून्य जीवन में भी चूड़ी वाली को शांति मिली ऐसा विश्वास नहीं होता था। पास ही उसकी पिंडलियों से सिर रगड़ता हुआ कलुआ दुम हिला रहा था। सुखिया उसके लिए घर में से कुछ खाने को ले आई थी, पर कलुआ उधर न देखकर अपनी स्वामिनी से स्नेह जता रहा था। चूड़ी वाली ने हंसते हुए कहा, चल तेरा दुलार हो चुका, जा खा ले। चूड़ी वाली ने मन में सोचा, कंगाल मनुष्य स्नेह के लिए क्यों भीख मांगता है, वह स्वयं नहीं करता, नहीं तो तृण विरुद्ध तथा पशु पक्षी भी तो स्नेह करने के लिए प्रस्तुत हैं। इतने में नंदू ने आकर कहा, मां एक बटोही बहुत थका हुआ भी आया है, भूख के मारे वह जैसे शिथिल हो गया है, तूने क्यों नहीं दे दिया? लेता भी नहीं, कहता है तू बड़ा गरीब लड़का है, तुझसे ना लूंगा। चूड़ी वाली वट वृक्ष की ओर चल पड़ी। अंधेरा हो गया था, पथिक जड़ का सहारा लेकर लेटा था। चूड़ी वाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कुछ भोजन कीजिए। तुम कौन हो?
पहले की एक वैश्या।
छी, मुझे पड़े रहने दो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोलो भी, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितने ही सुखी घरों को उजाड़कर शमशान बना देता है। महाराज हम लोग तो कला के व्यवसायी हैं, ये अपराध कला का मूल्य लगाने वालों की कुरुचि और कुत्सित इच्छा का है। संसार में बहुत से निर्लज स्वार्थपूर्ण व्यवसाय चलते हैं, फिर इसी पर इतना क्रोध क्यों? क्योंकि वह उन सबों में अधम और निकृष्ट है। परंतु वैश्या का व्यवसाय करके भी मैंने एक ही व्यक्ति से प्रेम किया था। मैं और धर्म नहीं जानती, पर अपने सरकार से जो कुछ मुझे मिला उसे मैं लोक सेवा में लगाती हूं। मेरे तालाब पर कोई भूखा नहीं रहने पाता। मेरी जीविका चाहे जो रही हो, मेरे अतिथि धर्म में बाधा ना दीजिए। पथिक एक बार ही उठकर बैठ गया और आंख गड़ाकर अंधेरे में देखने लगा। सहसा बोल उठा, चूड़ी वाली? कौन, सरकार? हां, तुमने शो कर लिया। मेरे अपराध जनक तमाम त्याग में पुण्य का भी भाग था, ये मैं नहीं जानता। सरकार, मैंने गृहस्थ कुलवधु होने के लिए कठोर तपस्या की है। इन 4 वर्षों में मुझे विश्वास हो गया है कि कुलवधु होने में जो महत्व है वह सेवा का है, ना कि विलास का। सेवा ही नहीं चूड़ी वाली, उसमें विलास का अनंत यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक बंधन में वह पर्यवसित नहीं है। ब्रह साधनों के विकृत हो जाने तक ही उसकी सीमा नहीं, गृहस्थ जीवन उसके लिए प्रचुर उपकरण प्रस्तुत करता है, इसलिए वह प्रे भी है और श्रेय भी है। मुझे विश्वास है कि तुम अब सफल हो जाओगी। मेरी सफलता आपकी कृपा पर है, विश्वास है कि अब इतने निर्दय न होंगे। कहते कहते चूड़ी वाली ने सरकार के पैर पकड़ लिए, सरकार ने उसके हाथ पकड़ लिए।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।